ओम श्री साई नाथाय नमः। भक्तों, श्री साई बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हमें आदर सहित श्री साई बाबा की जीवनी का श्रवण कर उसका मनन करना चाहिए। यदि हम इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो हमें अपने जीवन का ध्येय तथा परमानंद की सहज में ही प्राप्ति हो जाएगी। प्रायः सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। जब वह भावनापूर्ण होती तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होती थी। ऐसी ही एक कथा जिसमें बाबा ने हास्य के साथ में कितनी सुंदर शिक्षा दी है, आइए सुनते हैं।
साई राम साई राम
साई राम साई राम
साई राम साई राम
साई राम साई राम
साई राम मेरा सत्य गुरु साई राम मेरा सत्य गुरु
साई राम मेरा सत्य गुरु साई राम मेरा सत्य गुरु
साई राम मेरा सत्य गुरु साई राम मेरा सत्य गुरु
साई राम मेरा सत्य गुरु साई राम
तेरा नाम है सहारा तेरा नाम है आधारा
साई राम मेरा सत्य गुरु साई राम मेरा सत्य गुरु
साई राम साई राम
साई राम साई राम
साई राम साई
शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता था। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर रास्तों पर दुकान लगाते और सौदा बेचते थे। एक दिन ऐसे ही रविवार को श्री हेमाडपंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। बाबा के बाईं ओर श्यामा और दाहिनी ओर वामन राव बैठे हुए थे। तभी श्यामा ने हंसकर अण्णा साहेब अर्थात हेमाडपंत से कहा, देखो तुम्हारी कोट की बांह पर कुछ चने लगे हुए से लग रहे हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बांह स्पर्श की जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमाडपंत ने बाई कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जिसे वहां के उपस्थित लोगों ने बीन कर उठा लिए। बैठे हुए लोगों को तो हास्य का विषय मिल गया। सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, पर यह कोई न जान सका कि चने के दाने वहां कहां से आए और उसमें कैसे रहे। तब बाबा ने कहा, इन महाशय अण्णा साहेब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहां आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूं और ये चने इस कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है।
हेमाडपंत बोले, बाबा मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर आप मुझ पर ऐसा दोषारोपण क्यों करते हैं? अरे अभी तक तो मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए और आज तो मैं दिन भर में भूल कर भी बाजार नहीं गया। फिर आप ही बताइए, मैं ये चने भला कैसे खरीदता और जब मैंने खरीदी नहीं तब उसके खाने की बात ही कैसे रही? भोजन के समय जो भी मेरे निकट होता है ना बाबा, मैं उसे उसका उचित भाग दिए बिना कभी भी ग्रहण नहीं करता।
तब बाबा ने बड़ी उचित और अच्छी शिक्षा दी जो हम सब लोगों को ध्यान रखने जैसी है। उन्होंने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पहले तुम्हें कभी मेरी याद आती है? क्या मैं तुम्हारे साथ हरदम नहीं हूं? फिर क्या तुम मुझे पहले अर्पण करके भोजन किया करते हो? भक्तों, इस घटना के द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इस ओर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वरार्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को प्रथम ईश्वरार्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका रोज अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर हमें कुवृत्तियों के दमन में सहायता करेंगे। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है, और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध करके हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्राह्य विषय का रसास्वादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी, और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी।
मिट्टी में सब है मिलना, पर आत्मा अमर है।
मिट्टी में सब है मिलना, पर आत्मा अमर है।
जिसके है साथ साई, फिर उसको किसका डर है।
जिसके है साथ साई, फिर उसको किसका डर है।
जिसके है साथ साई, फिर उसको किसका डर है। साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम सत्य गुरु,
साई राम मेरा सत्य गुरु, साई राम मेरा सत्य गुरु।
तेरा नाम है सहारा, तेरा नाम है आधारा।
आइए इसी संदर्भ में श्री कृष्ण और सुदामा की एक कथा सुनी जाए। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या का अध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन में भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों को खाने के लिए कुछ चने भी दिए, और वो उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में कोई चर्चा न की और न कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे कि दादा तुम क्या खा रहे हो और ये कड़कड़ की आवाज कैसी हो रही है? सुदामा ने उत्तर दिया, अरे यहां खाने को है ही क्या,
मैं तो शीत से कांप रहा हूं, इसलिए मेरे दांत कड़कड़ 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 बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा, दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है, और जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं धूल खा रहा हूं। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो अर्थात एवमस्तु। खैर दादा, ये तो केवल स्वप्न था, मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु थके होने के कारण मैंने तुमसे ये प्रश्न कर दिया। भक्तों, यदि सुदामा थोड़े बहुत भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो क्या वे इस भांति आचरण करते? अतः उन्हें इसका फल भोगना भी पड़ा। कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल जो उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में सुवर्ण नगरी प्रदान कर दी। इसलिए भक्तों, जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए और बाबा की शिक्षा याद रखनी चाहिए कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्छिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे आप खुद ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है।
तेरे दर पे जो भी आए दुख दर्द भूल जाए,
तेरे दर पे जो भी आए दुख दर्द भूल जाए,
तेरे दर पे जो भी आए दुख दर्द भूल जाए,
तेरे दर पे जो भी आए दुख दर्द भूल जाए,
तन मन हो उसका निर्मल खुशियों के गीत गाए,
तन मन हो उसका निर्मल खुशियों के गीत गाए,
तन मन हो उसका निर्मल खुशियों के गीत गाए, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु,
साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु,
तेरा नाम है सहारा, तेरा नाम है आधारा, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु,
साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु,
जय साईं राम साईं।
आइए भक्तों, एक और कथा सुनाता हूं बाबा के जीवन की। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन नहीं होता था। एक अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर देखने वाले व्यग्र होकर मौसीबाई से कहने लगे, मां कृपा करके धीरे धीरे पेट दबाओ, इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतरणियां और नाड़ियां ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी ना पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें करके क्रोधित हो गए। साहस किसे था जो उन्हें रोके? उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ के नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रख उसे पेट से धक्का देने लगे। सोटा लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र करके प्रवेश कर जाएगा। लोग शंकित एवं भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है।
बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की न थी। अरे भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कण मात्र भी न होने देते थे। भक्तों को तो आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप न करेंगे और सबको उनकी इच्छा अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे, क्योंकि केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। बोलिए श्री समर्थ साईनाथ महाराज की जय।
कब रहम नजर कर दे तू सजदा करता चल, कब रहम नजर कर दे तू सजदा करता चल, कब साईं झोल भर दे तू सजदा करता चल, साईं झोल भर दे तू सजदा करता चल, कब रहम नजर कर दे तू सजदा करता चल,
कब रहम नजर कर दे तू सजदा करता चल,
कब रहम नजर कर दे तू सजदा करता चल,
कब रहम नजर कर दे तू सजदा करता चल।
अल्लाह साईं मौला साईं राम साईं भोला साईं,
अल्लाह साईं मौला साईं राम साईं भोला साईं,
अल्लाह साईं मौला साईं राम साईं भोला साईं,
अल्लाह साईं मौला साईं राम साईं भोला साईं। रहे हर पल कब साईं झोल भर दे तू सजदा करता चल, साईं झोल भर दे तू सजदा करता चल, कब रहम नजर कर दे तू सजदा करता चल, कब रहम नजर कर दे तू सजदा करता चल, अल्लाह साईं मौला साईं राम साईं।